नमस्कार भारत, 9 दिसंबर दिन शनिवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 89 सीटों पर होगा मतदान।
मेरा नाम है वीणा बेन, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि इलेक्शन हो और मैं अपना वोट दूँ।
हमें उम्मीद है कि हम जिसको वोट करेंगे वो उस पक्ष की बाजी पलट देगा।
राजस्थान में अफराजुल की हत्या से भयभीत दोस्त रिश्तेदार कर रहे हैं न्याय की मांग।
वीडियो में बोल रहा है कि चुन चुन के मारूंगा तो लगेंगे हम, तो सरकार सही तरह नहीं करेगा तो कौन करेगा।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार जो करेगा मुझे मंजूर है, किंतु सजा कड़ी से कड़ी होना चाहिए ये सब फांसी के लिए।
सुनिए भाजपा और संसद से इस्तीफा देने वाले नाना पटोले को।
भाई प्रधानमंत्री जी के घर में गए विंटर सेशन में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हमने उनको पूछा गया तो उल्टी डांट हमको खिलाई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के मतदान होंगे। पहले चरण में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 2 दशक से शासन कर रही भाजपा वहां अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार प्रदेश में सरकार बना सकेगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी मानने की घोषणा के बाद आज दूसरे दिन गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसराइली सैनिकों के साथ हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के लिए इसराइली दूत डैनी डेनन ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। उधर संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने कहा है कि इसराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का अमरीका समर्थन कर रहा है। इस मामले में आपसी सहभागिता को मान्यता दी जानी चाहिए। इसराइल का समर्थन करने का अमेरिका का फैसला बताता है कि वो इलाके में शांति प्रक्रिया का नेतृत्व करने की भूमिका लेने योग्य नहीं है। उनके फैसले की दुनिया की नेताओं ने आलोचना की है, जो इसका संकेत है। ये संकेत है कि उनके फैसले का खतरनाक निहितार्थ अवैध नीतियों पर पड़ सकता है और इसका असर इस इलाके की शांति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग से सैकड़ों इमारतों के जलकर खाक होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने सरकार से कहा है कि वो आग पर काबू पाने के लिए कैलिफोर्निया में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करे। दक्षिण कैलिफोर्निया में 5 दिन पहले शुरू हुए इस आग के कारण अब तक 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ा है। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में हुए एक हमले में संयुक्त राष्ट्र के 14 शांति रक्षकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मोनुस्कू शांति मिशन के मुताबिक नॉर्थ किवू प्रांत में एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी ADF के संदिग्ध विद्रोहियों ने शांति रक्षकों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने इसे युद्ध अपराध कहा है। उन्होंने कहा, मैं बीती रात संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों पर जो हमला हुआ उसकी आलोचना करता हूं। जहां हमला हुआ वहां से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नॉर्थ किवू में तंजानिया के 12 शांति रक्षकों की मौत हुई है और कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। मुझे यह भी पता चला है कि कांगो की सेना के 5 जवानों की भी मौत हुई है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों और तंजानिया के लोगों के साथ है। आशा करता हूं कि घायलों की सेहत में जल्द सुधार होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश के शब्द। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने के लिए चल रही वार्ता अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष भविष्य में यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के रिश्ते पर सहमत हो गए हैं। इस बात पर सहमति बन गई है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ को आर्थिक समझौते के तहत $50 अरब देगा और यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयरलैंड से सटी अपनी सीमा को खुली रखेगा। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना ने भारत को 1-0 से हराकर हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना की तरफ से गोंजालो पिलात ने गोल किया। गुरुवार को अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं भारत ने बेल्जियम की टीम को हराया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हम चलेंगे भरूच, जहां बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार मौजूद हैं, लेकिन पहले आइए सुनते हैं कुछ मतदाताओं की आवाज।
मेरा नाम है अबीना बेन। मैं कब से इंतजार कर रही हूं कि इलेक्शन हो और मैं अपना वोट दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर एक वोट की अहमियत है।
आप भी जाएंगे वोट देने आज?
हाँ जी बिल्कुल, वोट करेंगे आज। हमें उम्मीद है कि हम जिसको वोट करेंगे वो उस पक्ष की बाजी पलट देगा।
आपके आपको इतनी उम्मीद है कि आपके वोट से बाजी पलट जाएगी?
बिल्कुल।
कुछ मतदाताओं की आवाज गुजरात से सुन रहे थे आप, और इस बीच कुछ और मतदाताओं की आवाज हम तक पहुंच रही है, आप भी सुनिए।
क्या नाम है आपका?
रफीक।
आप वोट करने जा रहे हैं आज?
हाँ, वोट का करवा जाऊँ।
कहाँ पे आपका मतदान केंद्र है?
मदीना होटल।
आपका नाम क्या है?
शब्बीर भाई। वोट करने जा रहे हैं हम नागोरीवाड़ में, मदीना होटल, मोहम्मदपुरा।
तो आपको लगता है वोट करने से परिवर्तन कुछ होगा?
कुछ होता नहीं है। सब वो भी कांग्रेस वाले बेकार और भाजपा भी बेकार।
वोट से क्या परिवर्तन होगा पता चलेगा 18 दिसंबर को, जब मतदान के नतीजे आएंगे। फिलहाल चलिए भरूच बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार के पास। रजनीश, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए, वहाँ मौसम कैसा है? दिल्ली की तरह सर्द या चुनाव की गर्मी महसूस हो रही है?
मौसम के तापमान की बात करें संदीप, तो यहाँ का तापमान अभी 22 डिग्री है और आपके दिल्ली का तापमान 11 डिग्री है, मतलब सीधे आधा का फर्क है। चुनावी सरगर्मियां तो जरूर है और इसको महसूस भी किया जा रहा है। मैं अभी भरूच सिटी विधानसभा क्षेत्र के लाल बाजार कुमारसाला स्कूल के सामने खड़ा हूं, और यहां दो पोलिंग बूथ है, एक बूथ नंबर 146/245, 148/245। जी संदीप।
रजनीश, गुजरात में आज जिन 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ खास चेहरे, बड़े नाम भी हैं, उनकी किस्मत, चुनावी किस्मत आज दांव पर लगी है?
संदीप, आज जहां चुनाव है सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में, ये बड़े महत्वपूर्ण है, खास करके सत्ताधारी बीजेपी के लिए। पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पे बढ़िया प्रदर्शन किया था और 89 में से 63 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस 23 सीट ही जीत पाई थी। और बड़े नामों की बात करें संदीप, तो राजकोट पश्चिम से मुख्यमंत्री खुद विजय रूपाणी है, मेहसाणा से उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह की किस्मत का भी फैसला आज ही ईवीएम में बंद होगा। प्लस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघाणी भी आज ही, उनके किस्मत का फैसला होगा। इसके साथ कांग्रेस नेता अर्जुन मडवाड़िया और छोटू भाई वसावा हैं।
ये बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार भरूच से थे, गुजरात से, और आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय भी गुजरात से निकलकर आया है। आइए आपको बताते हैं क्या है आज इंडिया बोल का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की प्राथमिक सदस्यता निलंबित की। इससे पहले बीजेपी के कई नेता भी अपने विरोधियों के लिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। क्या राजनीति में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह है? क्या हो सकता है इसका समाधान? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 दिसंबर शाम 7:30 बजे 1811-7000 और 1811-7001 पर मुफ्त फोन करें।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 330 किलोमीटर दूर राजसमंद जिला, जहां कुछ ही दिन पहले एक मजदूर को बेहद क्रूरता के साथ मार दिया गया था। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अफराजुल की। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें शंभूलाल नामक एक व्यक्ति अफराजुल की हत्या के बाद उनका शव जलाता हुआ नजर आ रहा था। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक अफराजुल के रिश्तेदारों से बात की।
मैं अभी राजसमंद के मेहता मंगरी इलाके में हूं। यहां टीन शेड में अफराजुल अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे, उनके दामाद उनके साथ रहते थे, उनके एक भांजे उनके साथ रहते थे, और वो यहाँ पर ठेकेदारी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। आपने वो वीडियो देखा होगा जो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। मेरे साथ उनके भांजे हैं, उनके दामाद हैं और मकान मालिक भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा खेमराज पालीवाल जी से। खेमराज जी, आपके मकान में अफराजुल रहते थे, किस तरीके के इंसान थे वो?
वो अच्छे इंसान थे और अच्छा व्यवहार रखते थे हमसे, तो कभी भेदभाव नहीं रखते थे।
मेरे साथ में रामलाल जी हैं जो ऑटो चलाते हैं, करीब 10 साल से वो अफराजुल को जानते थे और रोजाना जब भी उनको काम पे जाना होता था इन्हीं का ऑटो वो इस्तेमाल करते थे।
हमारे को भाड़ा देते थे, हम जाते थे वहाँ पे जल चिक्की, और अच्छे इंसान थे, हम प्रेम से रहते थे।
आपने वीडियो देखा है?
वीडियो मैंने नहीं देखा है, अखबार में जरूर देखा है मैंने, पेपर में। पेपर में देखने के बाद में वो इंसान ही मेरे को नजर आता है, यार अच्छा इंसान था, वो चला गया है।
आप उनके दामाद हैं, कब से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और क्या वजह है कि आप लोगों को पश्चिम बंगाल से यहाँ के आप काम कर रहे हैं?
जी सर, यहाँ से थोड़ा बहुत कमा के ले आते हैं तो घर पे खाना, बाल बच्चे पहुँचते हैं सर, घर पे रहते हैं तो घर के बात अलग होते हैं, यहाँ रहते हैं तो यहाँ दो पैसा लेके भेजते हैं घर, तो वही रोजी रोटी होते हैं।
मेरे साथ में इनामुल हैं जो अभी इस जैसे ये वीडियो चला रोते हुए, इनकी आंखों में आंसू में देख पा रहा हूँ, उधर चले गए थे। इनामुल क्या आप?
मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्या बात सर, समझ में नहीं आ रहा है।
अभी भी आप यहाँ रुके हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है आप दोबारा काम पे जा पाएंगे, कोई आपसे काम के लिए बुलाएगा, डर लगेगा आपको जाते हुए?
सर डर तो बहुत लग रहा है, ऐसे तो डर तो लगेगा, किंतु अपना जान पहचान अगर कोई हो, किसी नंबर से अपने से कांटेक्ट हो तो उसी के काम पे हो तो जा सकता हूँ, ऐसे मुझे भी कोई धोखा से अगर पार सकता है सर।
बाहर से आप लोग यहाँ कमाने के लिए आए हैं, क्या आपको लगता है अब आप उस तरीके से काम कर पाएंगे यहाँ ठहर के इतने बड़े हादसे के बाद?
अगर जैसे ससुर जी को मारा है वैसे अगर मेरे को भी कोई धोखा से बोला के मार देते इसमें क्या करते?
बाकी इसको कोई ऐसे नहीं होगा, 3 महीना की 4 महीना की 6 महीने के बाद इसको जमानत होकर छुट्टी हो गया तो फिर डर का डर तो घुसा हुआ रहेगा।
फिर ये वीडियो में बोल रहा है की चुन चुन के मारूंगा तो डर तो लगेंगे हमको, अगर सरकार सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा हमको?
बदले के बीच में नहीं है, मेरे तरफ से सरकार जो करेगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार जो करेगा मुझे मंजूर है, मैं मान लूंगा, किंतु सजा कड़ी से कड़ी होना चाहिए जैसे फांसी के जैसे।
ये थे राजस्थान के राजसमंद में मृतक अफजालुल के रिश्तेदार जो हत्यारे के लिए फांसी की सजा मांग कर रहे हैं। और अब बात नाना पटोले की। गुजरात चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के भंडारा से भाजपा सांसद नाना पटोले ने बतौर सांसद और भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला क्या है जानने के लिए बीबीसी मराठी सेवा के हमारे सहयोगी अभिजीत कांबले ने नाना पटोले से बात की।
जब सरकार आने के पहले जो आश्वासन लोगों को सरकार ने दी थी, मोदी साहब ने दी थी, वो आश्वासन पूरे फेल हुए हैं। पहला अगर कोई निर्णय केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया कि हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिश लागू नहीं करें। पहला विश्वासघात किसानों के साथ उसी समय किया गया। आज देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, दलित, इनके बारे में भी सरकार का जो दृष्टिकोण है वो गलत है। और गए 3 साल से ओबीसी के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, आदिवासी के बच्चों को सिंपल स्कॉलरशिप भी सरकार ने नहीं दी। और ये सब विषयों को मैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को मिल के बार बार बताने के बाद भी सरकार ये सब चीज़ों के ऊपर नज़रअंदाज कर रही थी और इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
नाना जी, हम जानना चाहेंगे कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, ये चर्चा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे?
देखो, हम रैली में तो जाएंगे गुजरात में, लेकिन हमारा अभी कोई पार्टी में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक जो दिशा देंगे उस दिशा को हम एक्सेप्ट करेंगे।
ये कहा जाता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ प्रफुल्ल पटेल आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं काफ़ी सालों से, और उनकी जो भाजपा के साथ नज़दीकियाँ हैं इस वजह से आप बीजेपी छोड़ रहे हैं।
लेकिन प्रफुल्ल पटेल की जो नज़दीकियाँ भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ थी, उसका कारण भी परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को फटकारा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। आखिर प्रफुल्ल पटेल अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ जा रहे हैं कि मुझे वो उसका पता नहीं। और लोकतंत्र में मुझे पता है कि लोगों के लिए जो काम करने वाला वो कभी हारता नहीं।
आप 2014 में जब चुनाव लड़े तो मोदी जी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा था, और बाद में ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली कि आपको उनकी नीतियाँ पसंद नहीं है?
भाई, प्रधानमंत्री जी के घर में गए विंटर सेशन में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हमने उनको पूछा गया तो उल्टी डांट हमको खिलाई, और उसी समय ये लगा कि ये आदमी ना ओबीसी का है ना ये आदमी किसानों का है, और उसी समय हमने निर्णय लिया कि हम इनकी गुनाह में कोई भागीदार हम नहीं बने।
ये थे नाना पटोले जिन्होंने मोदी सरकार से नाराजगी जताते हुए सांसद की कुर्सी और भाजपा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया है। और अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। मानसी दास स्टूडियो में मौजूद हैं, अखबार ठंडे ठंडे लग रहे हैं आज।
जी, दिल्ली के सभी अखबारों में बहुत सारी खबरों की चर्चा है, लेकिन गुजरात पर मुझे खबरें कम ही दिख रही हैं। आज वहाँ मतदान होने वाले हैं, लेकिन सभी अखबारों में पहले पन्ने पर मैक्स अस्पताल के लाइसेंस रद्द होने की खबर जो है वो पहले पन्ने पर एकदम सबसे ऊपर है। खबर ये है कि दिल्ली सरकार ने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अस्पताल में अब कोई नया मरीज भर्ती नहीं होगा, लेकिन जो मरीज वहाँ भर्ती हैं उनका इलाज उसी अस्पताल में किया जाएगा। और एक खबर आपको बता दूं, जनसत्ता में जो छपी है खबर यह है कि सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए जो उनको समय सीमा दी गई है उसको 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस ने गुजरात चुनाव से पहले पाटीदारों को जो आरक्षण देने की बात की है संवैधानिक तौर पर उसे पूरा कर पाना असंभव है और कांग्रेस झूठे वायदे कर रही है।
बहुत शुक्रिया मानसी दास समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और अब बात झारखंड की, जहां गढ़वा जिले में कथित तौर पर भूख से मौत का एक और मामला सामने आया है। झारखंड में पिछले 2 महीने में इस तरह का ये चौथा मामला है। सुनिए रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
एक्चुअली इसमें इनका पोस्टमार्टम करवाया गया है एंड फूड हैज बीन फाउंड इन हर स्टमक बाय डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन हैज बीन रूल्ड आउट।
यह आवाज गढ़वा के उपायुक्त डॉक्टर नेहा अरोड़ा की थी। वे बता रही थी कि प्रेमनी कुंवर के पेट में अन्न के दाने मिले हैं, लिहाजा उनकी मौत का कारण भूख नहीं हो सकती। अब यह इत्तेफाकी है कि जिस महिला के पेट में अन्न के दाने मिलने की बात कही जा रही है उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। उनके 13 साल के बेटे उत्तम महतो को आज भी आस पड़ोस के लोग खिला रहे हैं। उनके बेटे उत्तम ने मुझे बताया कि माँ की मौत के कई दिन पहले से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। उत्तम महतो ने BBC से कहा,
8 दिन से खाना नहीं बना था, थोड़ा मोड़ा खाते थे, स्कूल भी हम जाए वहीं खाते थे।
प्रेमनी कुंवर गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड के कोरटा गांव में रहती थी। उनके पति मुकुल महतो की कई साल पहले मौत हो गई। वे दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी मौत के बाद प्रेमनी ने मजदूरी कर अपना और अपने बेटे का पेट पाला। पिछले कुछ महीने से वे मजदूरी भी नहीं कर पा रही थीं। हर महीने मिलने वाला वृद्धावस्था पेंशन और राशन के चावल के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन जुलाई के बाद उन्हें वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिला। इस कारण वे खाने का कोई भी सामान नहीं खरीद सकी। डंडा के प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र चौधरी प्रशासन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। BBC से बातचीत में वीरेंद्र चौधरी ने कहा,
नवंबर का राशन उसको नहीं मिला है, पेंशन जुलाई से नवंबर तक का उसको पेंशन 4 माह का नहीं मिला। घर में उसका 13 वर्षीय एक लड़का था और वही स्कूल से जो है मिलकर भोजन लेकर भी जब आता था तो खाया कर, लेकिन वो भी बीच में स्कूल नहीं जा रहा था, उसके कारण एक सप्ताह से उसके घर में चूल्हा नहीं मिला। अभी तक तो अचानक जो तब तक कुछ भी नहीं मिला उसको, नहीं रुपए न कर मिले।
डंडा के BDO शहजाद परवेज इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने BBC से कहा,
ऐसी कोई बात नहीं की राशन नहीं मिल रहा था, उसको हर महीने कंटिन्यूस राशन मिल रहा था और इनफैक्ट लास्ट मंथ भी उनको राशन मिला था। जिन डेथ हुई थी उस दिन मैं स्पॉट पे था और न सिर्फ उसका बेटा जो उत्तम नाम है उनका बेटा था, बल्कि उनके परिवार वालों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। 10 दिनों से तबियत खराब थी।
बहरहाल प्रेमनी कुंवर की मौत के 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर का चूल्हा नहीं जल सका है। 13 साल के उनके बेटे उत्तम को खाना बनाने ही नहीं आता। यह काम उनकी माँ करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे अगर उत्तम को खाना बनाने में महारत होती तब भी उनके घर का चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि उनका राशन अब तक नहीं मिल सका है। सरकार के अधिकारी इसके लिए औपचारिकताओं के पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए गढ़वा में।
अभी 3 दिन पहले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 25 साल पूरे हुए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सवालों के घेरे में रहे, हालांकि उन्हें क्लीन चिट भी मिलती रही। आज इसी विषय पर सुनिए रेहान फजल की विवेचना।
6 दिसंबर 1992, स्थान दिल्ली। उस दिन नरसिम्हा राव सुबह 7 बजे सोकर उठे। अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने अगला आधा घंटा ट्रेडमिल पर वॉक कर बिताया। उसके बाद उनके निजी डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी आ गए। दोनों कुछ देर तक तेलुगु और अंग्रेजी में बतियाते रहे। उसके बाद रेड्डी अपने घर चले आए। दोपहर बाद जब 12:20 पर उन्होंने अपना टेलीविजन खोला तो उन्होंने देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों पर चढ़े हुए। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने BBC को बताया,
मैं
पहले तो अचंभा रह गया था टेलीविजन पे देख के, तो मुझे भी धक्का लगा जो मैं देख रहा था, मगर मेरे मन में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर पे क्या बीतती होगी, तो इस समय जो स्ट्रेस बढ़ गया होगा उनका बहुत ज्यादा, तो एक डॉक्टर का फर्ज निभाने मैं चला गया वहाँ पे। मुझे देख के एकदम अचंभा हो गया, फिर कहा कि क्यों आए इस वक्त यहाँ पे, क्यों आए इस वक्त? तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा इस बाजू वाले कमरे में आ जाइए। तो फिर वहाँ पे आए, फिर थोड़ा अभी नाराज थे, नहीं नहीं इस वक्त थोड़ी है देखना है मुझे, इस वक्त मैं बिजी हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लूंगा। तो उस समय देखा कि उनका चेहरा लाल था, काफी एजिटेटेड थे, तो मैंने ब्लड प्रेशर लिया, काफी ज्यादा था, पल्स रेट भी देखा तो उसकी गति बहुत तेज थी। तो मैंने कहा सर थोड़ा दवाई मुझे और देनी पड़ेगी आपको, दवाई जो मैंने दिया वो ले लिए, चले गए अंदर।
उसी समय कार सेवक परमेश्वर दास हजारों कार सेवकों के साथ बाबरी मस्जिद की बाढ़ पार कर 450 साल पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रहे थे।
सब लोग यहीं से अपना जय श्री राम और जय श्री राम का नारा मंच पर लगाते गए। कार सेवक ही अपना रफ्तार इतना पकड़ लिया, इतना तेज गति से पहुंच गया अंदर और ऊपर चढ़ गए ऊपर तक गुंबद में कि वो किसी को बस के नहीं था, कोई कुछ कहे समझाए, जो जहां था वहीं पर अपना तोड़फोड़ शुरू कर दिया। जो बिल्कुल उत्साह में भरे तरह से लबालब थे वो लोग तो तोड़ते हुए जो है तीन चार जगह जो फाटक लगे थे चलते बने और अंदर प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के उपरांत उसमें जो है पहले से हाथ में कोई ऐसा भी नहीं, कोई कुदाल फावड़ा ये सब बेलचा हाथ में किसी का कुछ नहीं था। जा करके अंदर में जब गए और देखे कि इसमें कुछ लोग अपने आप में लग के तोड़ने फोड़ने लगे, वो लोग जैसे तैसे अगल बगल के स्थान में प्रवेश किए, पूछे कुछ है तो दो, नहीं दिए तो वो लोग ईटा से ईटा पत्थर से पत्थर मारकर, मैंने उस समय उनका उत्साह जो था ना इतना प्रबल था कि उत्साह प्रबल के नाते सारा करतूत हुआ कांड हुआ। और उसके पहले जो है एक एक जो है बस जो है कोई साधु कहाँ से सरकारी बस पीएससी ले लिया और लेते हुए तीन चार फाटक बसवे से तोड़ दिया, स्टार्ट किया और तोड़ते चला गया।
जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन मिलाया। तब तक नरसिम्हा राव कथित रूप से अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुके थे। माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में लिखते हैं,
मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो वायुसेना से कहें कि वो फैजाबाद में तैनात चेतक हेलीकॉप्टरों से अयोध्या में मौजूद कार सेवकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलवाएं। राव ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा, इस तरह की आपात परिस्थितियों में केंद्र के पास जो भी फैसला जरूरी हो लेने की सारी ताकत मौजूद है। मैंने उनसे विनती की, राव साहब कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के कैबिन में रख सकें और भारत के लोगों को बता सकें कि बाबरी मस्जिद को बचाने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और लंबे ठहराव के बाद बोले, फोतेदार जी मैं आपको दोबारा फोन करता हूं।
नरसिम्हा राव की उत्साहहीन प्रतिक्रिया देख फोतेदार ने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से मिलने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने उन्हें 5:30 बजे आने के लिए कहा। फोतेदार लिखते हैं,
जब मैं उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकलने लगा तो मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन आया कि 6:00 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। मैं फिर भी राष्ट्रपति से मिलने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और बोले, पीवी ने ये क्या किया है। मैंने राष्ट्रपति से कहा कि वो देश को टेलीविजन और रेडियो पर संबोधित करें, वो इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उनके सूचना अधिकारी ने बताया कि इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी और मुझे बहुत शक है कि वो ये अनुमति देंगे।
6:00 बजे नरसिम्हा राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक के दो विवरण सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं,
पूरी बैठक के दौरान नरसिम्हा राव इतने हद प्रभ थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबकी निगाहें जाफर शरीफ की तरफ मुड़ गईं, मानो उनसे कह रही हों कि आप ही कुछ कहिए। जाफर शरीफ ने कहा, इस घटना की देश सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माखनलाल फोतेदार ने उसी समय रोना शुरू कर दिया, लेकिन राव बुत की तरह चुप बैठे रहे।
दूसरा विवरण खुद माखनलाल फोतेदार देते हैं। राष्ट्रपति भवन से जब वो सीधे मंत्रिमंडल बैठक में पहुंचे तब तक बैठक शुरू हुए 20 मिनट बीत चुके थे। आगे की कहानी खुद माखनलाल फोतेदार की जुबानी।
वहां हर एक को चुप देखकर मैंने कटाक्ष किया, सबकी बोलती क्यों बंद है? इस पर माधवराव सिंधिया बोले, फोतेदार जी आपको पता नहीं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है? मैंने प्रधानमंत्री की तरफ देखकर पूछा, राव साहब क्या ये सही है?
प्रधानमंत्री मुझसे आंखें नहीं मिला पाए। उनके बजाय कैबिनेट सचिव ने जवाब दिया कि ये सही है। मैंने सारे कैबिनेट मंत्रियों के सामने राव से कहा कि इसके लिए सीधे वो जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा।
उधर कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे तब नरसिम्हा राव अपने निवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी हटे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। लेकिन नरसिम्हा राव पर बहुचर्चित किताब हाफ लायन लिखने वाले विनय सीतापति इस मामले में राव को क्लीन चिट देते हैं।
नवंबर 1992 में दो डेमोलिशंस प्लान हुए थे। एक था बाबरी मस्जिद का, बीजेपी और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में वो प्लान कर रहे थे। तो दिसंबर 6 में दो डेमोलिशन प्लान हुए और नरसिम्हा राव को ये पता था कि अगर मस्जिद गिरे या न गिरे नरसिम्हा राव को गिराना चाहिए, और इसीलिए पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें। नवंबर 92 में 5 या 6 सीसीपी कैबिनेट मीटिंग्स थे। मैंने वो मिनट्स देखे, मैंने बहुत से लोग इंटरव्यू किए जो वो मीटिंग्स में हैं। उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए। कारण तो साधारण था, क्योंकि लॉ सेक्रेटरी और लॉ ऑफिशियल्स कह रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि Only when law and order has broken down can you dismiss a government, not when law and order is about to break down. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज आप प्रेजिडेंट्स रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह। वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल गए, उनके तो मिनट्स तो ऑनलाइन हैं। ज्योति बसु भी आपके उनके स्पीचेस देखिए नवंबर 92 में, वो कह रहे हैं कि यूजुअली वी डोंट सपोर्ट प्रेजिडेंट्स रूल बट इफ देर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट द मॉस्क वी विल एग्री टू डिसमिस कल्याण सिंह। वो ये नहीं कह रहे थे कि वी डोंट ट्रस्ट कल्याण सिंह को अभी निकालो। दिसंबर 6 के बाद कितने लोग बोले कि नहीं हम जानते थे कि मस्जिद गिरने वाला है। अगर सोनिया गांधी जानती थी कि मस्जिद गिरने वाला था तो नवंबर 1992 में उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं कल्याण सिंह को डिसमिस करो।
राजनीतिक विश्लेषक और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का मानना है कि राव ने जानबूझकर मस्जिद गिर जाने दी, क्योंकि वो बीजेपी को उन्हीं की राजनीति में हराना चाहते थे।
जब अयोध्या आंदोलन तेज हुआ और बाबरी मस्जिद पर खतरा मंडरा रहा है, तो उस खतरे को कम करने की कोई कोशिश पीवी नरसिंह राव ने नहीं की। मेरा अपना मानना है, तथ्यों के आधार पर, लोगों से बातचीत करने के आधार पर, और अब खुद पीवी नरसिंह राव के जो प्रेस एडवाइजर रहे पीवीआरके प्रसाद, उन्होंने एक किताब लिखी है व्हील्स बिहाइंड द वेल। उस किताब में पीवीआरके प्रसाद बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मस्जिद को गिरने दिया और वे वहां पर मंदिर बनाने के लिए उत्सुक थे, उसके प्रयास किए, इसलिए रामालय ट्रस्ट बनवाया। मुझे भी एक अवसर ऐसा मिला जब हम पीवी नरसिंह राव से उन दिनों मस्जिद गिराई जा चुकी थी, तो 3 बड़े पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, प्रभाष जोशी और आरके मिश्र, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद ये तीनों गए पीवी नरसिंह राव से मिलने, मैं उनके साथ था। ये लोग जानना चाहते थे कि आपने 6 दिसंबर को ऐसा क्यों होने दिया। सबको सुनने के बाद नरसिंह राव, मुझे याद है, उन्होंने कहा, क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती। मैं इसका अर्थ ही निकालता हूँ कि अपनी राजनीति के तहत और ये समझ करके कि बाबरी मस्जिद ढहा दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति और विश्व हिंदू परिषद की राजनीति जो है हमेशा के लिए, जो मंदिर की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी और उसको कांग्रेस हथिया लेगी। लक्ष्य से प्रेरित होकर पीवी नरसिंह राव ने मस्जिद को ढहने दिया और उसका जो दुष्परिणाम हमारी भारतीय राजनीति पर हुआ है वो लंबे समय तक उसको मिटाया नहीं जा सकता।
कुछ भी हो, इस घटना से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत बदनामी हुई बल्कि इसने भारतीय समाज को इतनी बुरी तरह से बांट दिया जिसको अभी तक पाटा नहीं जा सका है। रेहान फतेल, BBC दिल्ली।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 89 सीटों पर मतदान होगा। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आप bbchindi.com पर आज दिन भर आकर यदि चाहें तो पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। वक्त हो चला है नमस्कार भारत में आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी के साथ दीजिए सभी को इजाजत।